हरे कृष्णा।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4
श्लोक क्रमांक 1
दिव्य ज्ञान। इसकी शुरुआत में भगवान इन श्लोकों में भगवद गीता के इतिहास के बारे में बताएंगे। भगवद गीता को भगवान ने सबसे पहले किसको बोला था? श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि भगवद गीता का उपदेश जो है वो हर समय और हर परिस्थिति के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि हर समय ये प्रासंगिक रहता है। कुछ लोग का ऐसा मत है, वो इस एटलीस्ट ये स्वीकार करते हैं कि भगवद गीता 5000 साल पहले बोली गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि भगवद गीता इस समय प्रासंगिक नहीं है। तो आप देख सकते हैं, प्रभुपाद इसमें समझाएंगे भी, कि भगवद गीता प्रायः 20 लाख साल पहले बोली गई थी। जब 20 लाख साल पहले बोली गई और भगवद गीता दोबारा जब भगवान ने बोली अर्जुन को 5000 साल पहले, तो 20 लाख माइनस 5000 साल तक जब वो प्रासंगिक रही है, तो अब आगे के 5000 साल में इसकी प्रासंगिकता कैसे खत्म हो जाएगी? तात्पर्य को देखिए। और एक और बात यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, किस प्रकार से, किस पद्धति से हमें भगवद गीता का ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। ये ज्ञान पूरी तरह से हमारे इंद्रियों के परे है, इसलिए इसको यथारूप परंपरा में स्वीकार करना होगा, तभी हम इसको ठीक प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा इसका लाभ कुछ भी नहीं होगा। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तात्पर्य यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पे आप ध्यान दीजिए। एक बात ये कि इस तथ्य को कि भगवद गीता सबसे पहले सूर्यदेव को दी गई थी, आपको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, कि क्योंकि किसी भी भौतिक इंद्रियक तरीकों के द्वारा हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि वाकई भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था कि नहीं दिया था। दूसरी चीज, सूर्य आपको दिखता है लेकिन सूर्यदेव नहीं दिखते हैं। तो भगवद गीता के अनुसार सुन करके हम स्वीकार करते हैं कि सूर्य भी एक व्यक्ति हैं, सूर्य देवता हैं, जिनका शरीर हमें सूर्य के ग्रह के रूप में दिखाई पड़ता है। ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो नेता है, जो राजा है, उसका कर्तव्य है कि जो उसकी प्रजा है उसको काम से बचाए। भौतिक कार्यों की वजह से सभी लोग भविष्यगामी शरीरों को प्राप्त होंगे, भौतिक शरीरों को प्राप्त होंगे। तो एक लीडर का ये कर्तव्य है कि वो ट्रेनिंग दे, कैसे लोगों को जो उस पर लोग आश्रित हैं, कैसे वो अब आगे भवबंधन से मुक्त हो सकें और भगवान के धाम जा सकें। और इसी कारण से महत्वपूर्ण है कि भगवद गीता के ज्ञान को जन जन में दिया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स को भी दिया जाए। जो नेता हैं, अगर उनको भगवद गीता का ज्ञान दे दिया गया तो वो बड़ी आसानी से अपनी शक्ति के और अपने प्रभाव के द्वारा जन सामान्य को गीता का उपदेश कर सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। यानी शिक्षा का अर्थ ये है कि पुस्तकों के माध्यम से और जैसे अन्य शिक्षक शैक्षिक उपकरण होते हैं, उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि लोग भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समझें। संस्कृति मतलब सामाजिक गठन, पारिवारिक गठन, सामाजिक गठन इस प्रकार से होना चाहिए कि लोग अपने आप ही भगवद गीता की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन कर सके। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, सारे होटल अगर गोविंद रेस्टोरेंट बन जाए जहां भगवान का प्रसाद वितरण हो, तो बड़े आसानी से लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और भगवान इस बात को अगर आपको याद हो तो तीसरे अध्याय बोलते हैं कि हमको उनका प्रसाद हम ग्रहण करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा, और भक्ति के द्वारा का मतलब खुद भी भक्ति करके, जैसे कि पूर्ववर्ती राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, इन सभी लोगों के राज्य में सब लोग भक्ति करते थे, पृथु महाराज के केस में। तो इसीलिए भगवान राजाओं को ये ज्ञान देते हैं ताकि जन सामान्य भी इस शिक्षा का पालन कर सके। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। महाविद्या क्यों है? क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान किसी किंचित मात्रा से अगर किसी भाग्य से किसी व्यक्ति को मिल गया तो उसे अपने मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो हम पिस रहे हैं, बड़ी आसानी से भगवान के शरणागत होकर के हम भगवान के धाम जा सकते हैं, और इसको हम केवल भगवद गीता के द्वारा ही जान सकते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है मुझे। तो इसलिए हम सभी लोगों को सोचना चाहिए, अब राजा तो हमारे कृष्ण भावना भावित नहीं है, दुर्भाग्य बात है, लेकिन हमारे अपने पर्सनल स्तर पर हमको भगवद गीता की शिक्षाओं को सीखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो लोग इसको ग्रहण करने के इच्छुक हैं उनकी मदद करें भगवद गीता को समझने के लिए और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। इस मन्वंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों या लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षक सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेज यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल हैं, यह और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपने कक्षा को तय करता है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रह्मा जी हमारे बारे में नहीं बोल रहे हैं कि सूर्य हमारी आज्ञा से चलता है, वो बोल रहे हैं भगवान गोविंद की आज्ञा से चलता है। इस तथ्य को भी हमें श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। हम सूर्य को उसकी कक्षा में चलता हुआ देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि किसकी आज्ञा से चल रहा है। तो ये बात हमको रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, यानी ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हृदय में स्फुरित हुआ और ब्रह्मा जी ने इसको बोला और इसको शास्त्र में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा भाग्य है एक्चुअली। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिखाता है कि सूर्यदेव स्वतः ऐसे भी भगवान गोविंद के, भगवान कृष्ण के दास हैं। तो इसके लिए सूर्यदेव के द्वारा भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पहले से उनके स्वामी हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। एक और एक अच्छी बात हमारे चित्त में आ रही है कि जब भगवत गीता को सुनने के लिए सूर्यदेव को उत्कंठा थी, तो हम इसको शिशु शास्त्र क्यों बोल रहे हैं? हम ये सोचें क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, अब मैं तो बहुत उच्च और उच्च कोटि की पुस्तकें पढ़ूंगा, ये सोचने वाली बात है कि सूर्यदेव भी अगर भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मेरे लिए कितना आवश्यक है इस ज्ञान को सुनना। और एक अद्भुत बात यह भी है कि परंपरा में होने के कारण वही ज्ञान हमको मिल रहा है जो भगवान ने सूर्यदेव को दिया था। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ चततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुता इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे महाभारत के श्लोक का भी उदाहरण दे रहे हैं जिसमें भगवत गीता के इतिहास की पुष्टि हो रही है। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग था जो कि 8,00,000 वर्ष का था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12,00,000 वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग कितना है, बड़ा मुश्किल है बोलना, वर्ष अनुमानित की जाती है जिसमें से बहुत सारे लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,00,000 वर्ष पहले कही गई। पता नहीं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कितने जीरो हैं इसमें, बहुत सारे जीरो हैं। और मानव समाज में यह 20,00,000 वर्षों से विद्यमान रहे। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। तो आप देख सकते हैं कि जो ज्ञान 20,00,000 माइनस 5,000 साल तक प्रासंगिक रहा है वो ज्ञान इस समय भी अब प्रासंगिक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता आज के आधुनिक समाज में नहीं है। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों को जनक है जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि उसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपौरुषेय का अर्थ क्या है कि भगवद गीता के ज्ञान को हमको यथारूप स्वीकार करना पड़ेगा। अब जो भी तथ्य यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि त्रेता युग था, द्वापर युग था, इसको हम अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि हम कैसे माने कि त्रेता युग था या नहीं था। हमारे मानने का आधार यही है कि भगवद गीता में लिखा है और श्रद्धा से उसको स्वीकार करें। तो आप ये कह सकते हो कि सारे लोग क्यों नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उनकी सुकृति इस प्रकार की नहीं है। जो सुकृतिवान व्यक्ति होगा उसको सहज रूप से शास्त्रों में श्रद्धा होती है। तो यदि आपके हृदय में श्रद्धा है इस प्रकार की, तो आप बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं और इस भाग्य को बढ़ाना चाहिए भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ के, अध्ययन करके और हरे कृष्ण मंत्र का जप करके। क्योंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वेदों को श्रुति बोला जाता है, यानी भगवान से वो साक्षात आई है, आते हैं। उसी प्रकार से भगवान के श्रीमुख से भगवद गीता साक्षात प्रकट हुई है, इसलिए भगवद गीता भी श्रुति है। महाभारत स्मृति है, लेकिन स्मृति के अंदर भगवत गीता ये श्रुति है, साक्षात भगवान बोल रहे हैं। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद्गीता नहीं है। अतः भगवद्गीता के को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो यानी कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवद्गीता का ज्ञान हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे हृदय में चैलेंज की भावना होगी, हम लोग अश्रद्धा रखेंगे, तो फिर हम भगवद्गीता को नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भगवान ने बोला है वो बिल्कुल सही है, तो हम बड़ी आसानी से भगवद्गीता को स्वीकार कर सकते हैं और उसके ज्ञान से अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो अब यहाँ पे श्लोक में ये बता रहे हैं भगवान कि दोबारा इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का उद्देश्य है जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो उसकी स्थापना करते हैं। तो महाभारत का उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन महाभारत का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग महाभारत को पढ़ेंगे बहुत सारे कारणों से, लेकिन अंततोगत्वा जो महाभारत का सार है भगवद्गीता, उसको पढ़ेंगे, आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे और भगवान के प्रेमी बनेंगे। तो इस धर्म की जब जो ये धर्म है भागवत धर्म, जो कि भगवद्गीता में बताया गया है, इसका जब लोप होने लगा काल के प्रभाव से, तो भगवान फिर आकर के इस धर्म की स्थापना करते हैं भगवद्गीता को बोल करके। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा जाता है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद्गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। इंटरेस्टिंग है, राजर्षि मतलब धर्मात्मा, जिसको भगवान और भगवान की बात पर विश्वास है। तो भगवान ने ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान दिया कि तो क्योंकि वो इस ज्ञान की अनुभूति करेंगे, श्रद्धा से उसको स्वीकार करेंगे पहले, फिर उसकी अनुभूति करेंगे और साथ ही साथ जन सामान्य तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे, इसलिए दिया गया था। और जो आसुरिक लोग हैं उनको भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं होता, तो उन्हें भगवद्गीता एक कपोल कल्पना लगती है और वो दूसरों को प्रचार भी करते हैं तो उससे कपोल कल्पना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ना तो उनको जीवन में कोई परिवर्तन आता है, ना सामने वाले के जीवन में कोई परिवर्तन आता है। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यानी उससे 5-4 वर्ष पहले भी भगवद्गीता के ज्ञान को कालक्रम में कुछ लोगों के ने तोड़ मरोड़ दिया, तो भगवान ने इसको वापस प्रस्तुत किया। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यानी कि लोगों की भगवद गीता पढ़ने की रुचि तो है, लेकिन लोग भगवद गीता के वचनों को वैसे प्रस्तुत नहीं करते हैं जैसे कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, बल्कि अपनी मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए देखिए भगवद गीता पढ़ने के बावजूद भी लोगों की स्थिति वही रहती है, कोई उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। तो लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ करके, ये भगवद गीता यथारूप को पढ़कर कितने सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा यानी गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद्गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप पता नहीं आप नहीं जानते हैं, लेकिन जब से मैं बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री से कभी देखता हूँ तो देखता हूँ किस प्रकार से प्रभुपाद जी इसको बिल्कुल अक्षरश पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमारे इस समय के अनुसार हमको समझाने का प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को उनके मंतव्य को ही प्रभुपाद जी पालन करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की भगवद्गीता ये गुरु परंपरा को के अनुसार है और इसी कारण से हमारे चित्त पर इतना तीव्र प्रभाव दिखाती है। श्लोक क्रमांक 3 पर एक बार देखेंगे। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतद् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन जो है वो गृहस्थ आश्रम में थे और अर्जुन कोई बहुत बड़े सन्यासी साधु नहीं थे, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण जो उनका था वो ये था कि भगवान के भक्त थे। भगवान का भक्त होना और भगवान के मित्र होना यानी कि भगवान के प्रति ईर्ष्या से मुक्त होना, ये गुण है भगवद्गीता को समझने के लिए एकमात्र गुण है। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रेमी होगा तो भगवद्गीता को रहस्य को आसानी से समझ सकता है, लेकिन अगर वो भगवत भगवान का द्वेषी है तो संस्कृत का स्कॉलर होने के बावजूद भी गीता उसको समझ में नहीं आएगी। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर, दो ही हैं और कुछ नहीं है। या तो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त है या फिर उसे विपर्य है यानी कि असुर है। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि बार बार वो उसमें एक सामान्य पुस्तक की तरह कोई ना कोई गलती ढूंढेगा, उसको सोचेगा कि भगवान कृष्ण कुछ गलत बोल रहे हैं। आपका भी अनुभव होगा, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपका आदर भाव नहीं है और वो सही बात भी बताए फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का भगवान कृष्ण के प्रति आदर भाव नहीं है वो भगवद्गीता की वाणी को सुन करके भी उसको अपने हृदय में धारण नहीं कर पाएगा। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। व्यर्थ क्यों हैं? क्योंकि भगवद्गीता का उद्देश्य है व्यक्ति को अज्ञान से उबारना, लेकिन जो व्यक्ति असुर है वो खुद उसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तो दूसरे के ज्ञान को कैसे दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकता है? अगर भगवद्गीता पढ़ने के बाद भी किसी को ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं इसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। अभी मैं जिस बात को बोल रहा था यही चीज़ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहली बात है कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर इस तरह से नहीं स्वीकार कर रहा है तो फिर ऐसी भगवद्गीता को या ऐसी भगवद्गीता के भाष्य को सुनने से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक हनी की बोतल है, शहद की बोतल है, उसके बोतल का ढक्कन नहीं खोला गया तो बाहर से चाटने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लाभ प्राप्त थोड़ा होगा, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ढक्कन खोलने का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना और ये समझना कि जो भी भगवद्गीता में ज्ञान दिया गया है भले मैं अभी समझ ना सकूं लेकिन बिल्कुल अक्षरश सत्य है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को इस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए एक चेतावनी है, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद भगवद गीता के इस परम ज्ञान से लाभान्वित हो। तो अर्जुन की परंपरा का अर्थ है भगवान की वाणी पे पूर्ण श्रद्धा, जैसा भगवद्गीता में है वो पूर्ण मंगलकारी है और बिल्कुल सही है। अब अर्जुन एक प्रश्न ये करेंगे कि मुझे तो लगता है कि आप मेरे मित्र हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था? तो उसका उत्तर भगवान देंगे और आगे चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्णा।